Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And friends, today is Sunday, so we shall be taking calls from you, all our listeners, on mutual fund and related issues. And the numbers where you can call us on are 2331-4444. 2342-1050 and 2331-0464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Dhanyawad Lalima aur hazir hain Market Mantra ke ek aur taza ank ke saath. Is karyakram mein हम देश विदेश की आर्थिक खबरों के बारे में बात करेंगे, शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे. चूंकि दिन रविवार का है इसलिए आज का दिन तो खास तौर पर हम डेडिकेट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर. और आपके पास कोई सवाल हो म्यूचुअल फंड से संबंधित जरूर पूछें हमसे. तीन टेलीफोन लाइन्स भी हमने आपके लिए खोले हुए हैं. नंबर हैं 23-31-44-23-42-10-50 और 23-310-464. तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें. अपने सवाल बेहिचक हमसे पूछें क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशुतोष गुप्ता, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं. आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत आपका.
जी, बहुत धन्यवाद.
And now let's begin today's edition with the headlines in English. Over to you, Lalima.
Thank you, Harsh. Yes, friends, let's begin with the headlines. Well, India and New Zealand announced launch of free trade agreement negotiations. Domestic markets to focus on US Federal Reserve's FOMC meet, trade policy developments, domestic and global macroeconomic data for Qs next week. And global crude oil prices register slight weekly rise. Brent crude ends over $70 per barrel.
भारत और न्यूजीलैंड आपसी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करेंगे. छुट्टियों से भरे सप्ताह के बाद घरेलू शेयर बाजारों की नजर कल से शुरू होने वाले सप्ताह में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों फैसले, वैश्विक व्यापार नीतियां, टैरिफ, विदेशी फंड निकासी और घरेलू तथा वैश्विक व्यापार के आंकड़ों पर रहेगी.
India and New Zealand have announced the launch of negotiations for a comprehensive and mutually beneficial free trade agreement, FTA negotiations. The significant step was marked by a meeting between Union Minister for Commerce and Industry, Piyush Goyal, and Minister for Trade and Investment of New Zealand, Todd McClay, in New Delhi today. In a social media post, Mr. Goyal said that this marks a significant milestone in the bilateral partnership, reflecting shared vision to deepen trade ties and expand economic opportunities between the two countries. He added that the bilateral trade continues to grow steadily and has surpassed $1 billion US dollars during April 2024 to January 2025.
और इससे पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए हैं. उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और भाषण देंगे. 3 दिन तक चलने वाला रायसीना डायलॉग कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा. इस वर्ष इस कार्यक्रम की मुख्य विषय वस्तु कालचक्र, जन शांति और पृथ्वी है. इस कार्यक्रम के दौरान विश्व के नीति निर्माता और चिंतक 6 मुख्य विषयों पर विचार मंथन करेंगे. इनमें पॉलिटिक्स, शिफ्टिंग सेंट्स एंड राइजिंग टाइड्स, रिजॉल्विंग द ग्रीन ट्रिलेमा, हु, वेयर एंड हाउ तथा डिजिटल प्लानर्स, एजेंट्स, एजेंसीज एंड एम्बेसीज हैं. रायसीना डायलॉग भारत का भू राजनीति और भू आर्थिकी पर प्रमुख कार्यक्रम है जो विश्व समुदाय की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के तौर तरीकों पर मंथन करता है. रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण में करीब 125 देशों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे. और सीधे चलते हैं विवेक के पास सहारनपुर से, जो अपने म्यूचुअल फंड के सवाल को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। जी विवेक, बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल पूछ लें।
मार्केट मंडरा टीम व एक्सपर्ट को नमस्कार। मेरा प्रश्न है, मेरा मंथली SIP 12,000 का है और फंड्स हैं SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें 1,000 का मंथली सिप है, इसमें मैं 8 ईयर से SIP के थ्रू इन्वेस्टेड हूँ। दूसरा फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड, इसमें 2,000 का मंथली सिप है, इसमें मैं 2 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ सिप के थ्रू। तीसरा फंड है प्राकपारिक फ्लेक्सी कैप, ये भी डायरेक्ट ग्रोथ है, इसमें 5,000 का सिप है, इसमें मैं 10 मंथ से इन्वेस्टेड हूँ। और नेक्स्ट फंड है निपोन इंडिया मल्टी कैप, इसमें 2,000 का सिप चल रहा है, इसमें मैं 3 फंड से इन्वेस्टेड हूँ 3 मंथ से। फिफ्थ है एडिलवीज मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें 1,000 का सिप है, और निपोन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें भी 1,000 का सिप है, इसमें मैंने इसी मंथ ज्वाइन किया है। मेरे जो टाइम होराइजन है वो 10-15 ईयर्स के लिए है, क्या एग्रेसिव पोर्टफोलियो के लिए मेरा फंड सिलेक्शन सही है या कुछ करेक्शन की नीड है, प्लीज गाइड।
जी देखिए, फंड सिलेक्शन तो आपका काफ़ी ठीक ठाक है, बढ़िया फंड है आपके पोर्टफोलियो में, और मोटे मोटे तौर पर जो स्प्रेड है आपके पास, एक लार्ज कैप फंड है ब्लू चिप के तौर पर SBI ब्लू चिप के तौर पर, कॉन्ट्रा है थोड़ा कॉन्ट्रेरियन वैल्यू ओरिएंटेड एक फ्लेवर पोर्टफोलियो में लाता है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक वैल्यू ओरिएंटेड शैली पर मैनेज फ्लेक्सी कैप फंड है, निपोन मल्टी कैप निपोन स्मॉल कैप आपने बताया, ये आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा और मिड कैप और स्मॉल कैप्स को ऐड करेंगे। तो कुल मिलाकर आई थिंक एक ओवरऑल वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, अलग अलग AMCs पे स्प्रेड है, अलग अलग मार्केट कैप का आपको एक्सपोजर है, थोड़ा सा स्टाइल डाइवर्सिटी है, तो कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ आपको चेंज करने की जरूरत है, इस पोर्टफोलियो में बने रहें। हाँ, और बहुत ज्यादा और फंड ऐड करने से भी बचें, क्योंकि छह फंड आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं, जो कि एक रीजनेबल नंबर है, तो बहुत ज्यादा और नए फंड्स ना बढ़ाएं और अपने निवेश पर बने रहें।
All right, we are now joined by Vandana calling us all the way from Jaipur. Hello, Vandana.
Hello, हाँ जी नमस्कार सर।
Welcome, नमस्कार। जी जी, सवाल पूछिए वंदना।
मुझे ये मैं पूछ रही थी कि हमें एक इंडेक्स फंड में लेना है SIP, मतलब करना है, तो निफ्टी 50 या BSE, सेंसेक्स, मिप कौन सा लें, जरा फंड
हाउस का नाम
भी आप बता दीजिएगा प्लीज।
जी, तो देखिए निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो दोनों में आपको बहुत ज्यादा कश्मकश या डिलेमा की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप दोनों में से निफ्टी 50 इंडेक्स का चुनाव कर सकते हैं, और जहां तक फंड है, देखिए निफ्टी इंडेक्स फंड्स में बहुत ज्यादा फर्क आमतौर पर होता नहीं है। आपको एक फंड का नाम अगर एक फंड से आपको शुरू करना है, SBI के निफ्टी इंडेक्स फंड या UTI के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इन दोनों में से आप किसी भी एक फंड का चुनाव कर उससे अपना SIP शुरू कर सकते हैं।
और खास तौर पर इस वक्त अगर हम देखें आशुतोष, कि कोई सेक्टर फंड अगर है और किसी ने उसमें लगाया है, वैसे तो पूरा बाजार ही गिरा हुआ है, लेकिन आम तौर पे अगर सेक्टर फंड वाले जो निवेशक हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी एक गिरावट हुई है।
जी बिल्कुल, देखिए सेक्टर फंड्स थोड़े हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, और उसका कारण यही है कि थोड़े नैरो इन्वेस्टमेंट फोकस वाले फंड होते हैं, एक ही सेक्टर में आपका पैसा लगा रहेगा, तो जब वो सेक्टर, और आमतौर पर मार्केट्स में देखा गया है कि अगर कोई सेक्टर मोमेंटम में है, उसमें एक अच्छी तेजी आई है, तो उस सेक्टर की तकरीबन सारी कंपनीज को उसका फायदा मिलता है, और जब वो सेक्टर गिरावट का दौर देखता है तब सारी कंपनीज की जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रहती है, तो इसलिए सेक्टर फंड्स हमेशा से ही थोड़े हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी रहे हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि मेजॉरिटी निवेशकों को सेक्टर फंड से बचना चाहिए, एक डाइवर्सिफाइड फंड्स का पोर्टफोलियो बनाकर उसमें लंबा निवेश करना चाहिए। हाँ, अगर आपको खासी कोई कन्विक्शन है किसी सेक्टर में, तो उसमें एक सप्लीमेंट्री एलोकेशन के तौर पर कुछ 10-12% अपना पैसा अगर डालना चाहें, तो सेक्टर फंड्स का मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कोई रोल पोर्टफोलियो में होता नहीं है। तो अभी के दौर में देखा गया कि कुछ सेक्टर जिनमें भारी गिरावट देखी गई है पिछले 2-3 महीने में, जैसे IT सेक्टर काफ़ी गिरा है, रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी गिरा है, कैपिटल गुड्स, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सेक्टर्स हैं जिनमें काफ़ी भारी गिरावट देखी गई है इस मंदी के दौर में, तो इनसे जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं जो इनमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी जाहिर सी बात है।
आशुतोष, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत अभी बहुत जमकर निवेश भी कर रहा है, बड़ा बजट उसमें जा रहा है, सरकार का पूरा फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैसा रहने वाला है?
देखिए लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहने चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब मार्केट में भारी गिरावट देखी जाएगी और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उससे इम्पैक्टेड है तो वो शॉर्ट टर्म में जरूर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स देगा. तो सेक्टर फंड्स के निवेशकों को ज़्यादा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होती है और ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें. और मैं फिर कहूँगा कि उनमें अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो एक बहुत छोटी रकम अपनी निवेश करें. इट शुड नॉट बी अ कोर ऑफ योर पोर्टफोलियो.
ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय दिनेश एंड ही इज़ फ्रॉम दिल्ली. यस दिनेश, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से.
जी जी जी.
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स या निफ्टी 50 इंडेक्स, इनमें से इस समय कौन सा लेना बेहतर होगा जिसमें ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा होंगी. थैंक यू.
देखिए निफ्टी 50 इंडिया की टॉप लिस्टेड, टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज में निवेश करते हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, उन 50 के बाद अगली 50 कंपनी में. तो ये टोटल टॉप 50 और नेक्स्ट 50 मिलाकर जो टोटल लार्ज कैप यूनिवर्स होता है बाजार का, वो जो टॉप 100 स्टॉक्स जिनको लार्ज कैप स्टॉक्स माना जाता है, ये टोटल वो वाला यूनिवर्स बनाते हैं. तो आमतौर पर लार्ज कैप इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी वैसे तो बढ़िया ये रहेगी कि आप दोनों में अपना पैसा स्प्रेड करिए, दोनों में डिवाइड करिए, जिससे आपको पूरे लार्ज कैप मार्केट का एक्सपोजर मिले. लेकिन फिर भी अगर आप कोई एक चुनना चाहते हैं तो, और खासकर अभी जो कि बियर मार्केट चल रही है और आमतौर पर यह देखा गया है कि पिछले 2-3 साल में लार्ज कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया है बनिस्बत छोटी कंपनियों में, तो उस नजरिए से भी हम देखेंगे तो शायद निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ, ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच रहेगी अभी के बाजार को देखते हुए. बट मेरे ख्याल से अगर आप दोनों में डिवाइड करेंगे अपना एक्सपोजर तो उसमें कोई बुराई नहीं है.
एंड वी आर नाउ कनेक्टेड विद हैदराबाद. सौरभ इज ऑनलाइन. यस सौरभ जी, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन.
Good evening, Market Mantra.
Good evening, ji.
My wife has got a portfolio in which 50% are small cap. I just want to name them and want to ask your advice. DSP small cap, HDFC small cap, Nippon India small cap, Quant small cap and SBI small cap. So my question is to the expert is that what should be done? Should the 50% of the small cap be reduced, or any one of the fund or some of the small cap fund should not be taken out of these?
Sure. So what I would suggest is that at this point in time, one is that you can avoid making any incremental investments in small caps. 50% portfolio in small caps, you know, in my opinion, is way too aggressive. And there is definitely a need to tone it down. From these 5 funds, over a period of time, you can consider narrowing this set down to 3 or maybe, 2 funds. And then, incrementally keep investing more money in flexicap, funds, which will form the core. So flexicap, multicap, value, these are the kind of funds which should form the core of your portfolio. But at this point in time, I think it is a very inopportune time to do any major reshuffling in your small cap holdings, because of course they have fallen more, and at this point in time realizing all those losses in the short term may not be very advisable. So for now, stop making any incremental investments because you already have 50%, which is way too high. Look to tone it down to say anything about 22% maximum in small caps. But do it over a period of time. Don't do it right now. And to start with, stop making incremental investments in them.
All right. We have Yogesh Sharma online, connected from Delhi. Yes, Yogeshji, please ask a question.
जी, आशुतोष जी, आपको नमस्कार.
नमस्कार.
सर, मेरा जो सवाल है वो ये है कि मेरे दो सवाल हैं. एक बार मैंने सवाल धीरेन्द्र सर से पूछा था कि सेफ विड्रॉवल रेट के लिए कितना विड्रॉवल रेट रखना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जी सेक के रेट से कुछ परसेंट कम. तो जी सेक का रेट हम क्या मान के चले कि किस बैंक का इंटरेस्ट रेट मानेंगे वो जी सेक का रेट चल रहा है. और दूसरा सवाल ये है कि क्या मेरा ही एसेट लार्ज मिड कैप से निकल करके अब आईसीआईसीआई लार्ज मिड कैप में शिफ्ट करने का टाइम आ गया है.
जी, तो पहला आपका सवाल सेफ विड्रॉल रेट. देखिए, आमतौर पर मेरा ये मानना है कि आप अपना विड्रॉल रेट आइडियली 4-5% रखिए, बट सर्टेनली 6% से ऊपर मत जाने दीजिए. एक लॉन्ग टर्म, अगर हम 10-year गवर्नमेंट जीसेक को अपना एक बेंचमार्क मान के चलते हैं, तो आज की डेट में 6.5-7% आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट एक जीसेक का रेट ऑफ रिटर्न मान के चलिए और उससे थोड़ा कम, सो मोटा मोटा हम वहीं पे आ जाते हैं कि करीब आप अपना अगर आइडियल विड्रॉल रेट रेगुलर इनकम के लिए 4-5% रखते हैं तो मेरे ख्याल से वो एक सस्टेनेबल विड्रॉल रेट होना चाहिए। दूसरा आपका सवाल मेरा है, देखिए निराशाजनक परफॉर्मेंस जरूर रही है और थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड पे अभी तक रही है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा कुछ पोर्टफोलियो में उठापटक या कोई बहुत ज्यादा कंसर्निंग चीजें नहीं दिख रही हैं। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एटलीस्ट अभी आप इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स अपने मिराए में बंद कर सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस का जो ड्यूरेशन है अंडर परफॉर्मेंस का वो एक एक्सटेंडेड पीरियड पे आ गया है, तो आप इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट जरूर बंद कर सकते हैं लेकिन उसमें से अभी स्विच करने का फैसला बहुत जल्दी में ना लें।
All right, we are connected with Haryana and Manoj is online. Yes, Manoj ji, please ask your question from my expert Ashutosh.
नमस्कार जी।
नमस्कार जी जी।
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक ही फंड की दो फंड को मतलब अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करने पर उनकी परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट सेम होती है या काफी फर्क आ जाता है उसमें?
देखिए फंड की परफॉर्मेंस दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला होता है कि किस एसेट क्लास में वो फंड इक्विटी फंड है या डेट फंड है या एक हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सचर है। तो सबसे बड़ा परफॉर्मेंस में एक फंड की फैक्टर होता है कि वो फंड पैसा निवेश कहाँ करता है, इक्विटी बाजार में निवेश करता है कि डेट मार्केट्स में निवेश करता है। तो इक्विटी में अगर निवेश करेगा तो लॉन्ग टर्म में आप उम्मीद कर सकते हैं कि भले ही वॉलेटाइल वो ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन वो ज़्यादा रिटर्न देने में सक्षम होगा। अब इक्विटी के अंदर भी फंड्स के रिटर्न में काफी फर्क आ सकता है लॉन्ग टर्म में क्योंकि अलग अलग फंड मैनेजर्स, यही फंड मैनेजर का काम होता है कि अच्छे स्टॉक चूज करें, उसको सही दाम पर खरीदें और जब उन्हें लगता है कि अब ये स्टॉक ऊपर काफी आ चुका है और अब इसमें और ऊपर जाने का पोटेंशियल नहीं है तो उससे बाहर आकर किसी और स्टॉक में निवेश करें। और जो ये काम बखूबी कर पाते हैं, कंसिस्टेंटली कर पाते हैं, उनके फंड आउट परफॉर्मेंस देते हैं। तो देखिए फंड के रिटर्न्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी फर्क आ सकता है लेकिन आपका ये काम है कि आप एक रीजनेबली जो फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं आप उनमें निवेश करें। कभी कभी वो अंडर परफॉर्म भी करेंगे तो उस टाइम पर धैर्य बनाए रखें और लगातार निवेशित रहें।
बिल्कुल, और बाकी कॉलर्स के पास भी चलेंगे और साथ साथ हम अगले हफ्ते मार्केट कैसा रहेगा इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पॉडकास्ट में लाइव बातचीत कर रहे हैं लेक्स फ्रिडमैन, एक बहुत बड़े पॉपुलर पॉडकास्टर हैं, तो हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसे सुन लेते हैं।
पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे और उसी दिन यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे और गोधरा की घटना हो गई और भयंकर घटना थी, लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को या पार्लियामेंट पर का हमला कहो या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो और उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति रहनी चाहिए। दूसरा, जो कहते हैं ये बहुत बड़े रायट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे, हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था, पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉडकास्ट में बोलते हुए हमने सुना। और छुट्टियों से भरे सप्ताह के बाद घरेलू शेयर बाजारों की नजर अब कल से शुरू होने वाले सप्ताह में अमरीकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के फैसले, वैश्विक व्यापार नीतियां, टैरिफ, विदेशी फंड निकासी और घरेलू तथा वैश्विक व्यापार के आंकड़ों पर रहेंगी। व्यापक आर्थिक मोर्चे पर थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI, मुद्रा स्फीति के आंकड़ों और फरवरी के व्यापार संतुलन के आंकड़ों पर भी बारीकी से बाजार नजर रखेगा। वैश्विक स्तर पर टैरिफ और वैश्विक व्यापार नीतियों के साथ साथ बाजार प्रतिभागी इस महीने की 19 तारीख को निर्धारित अमरीकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की नीति बैठक के फैसले पर मुख्यता से नजर रखेंगे। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अगले सप्ताह अपने ब्याज दरों के फैसले की घोषणा करेंगे। पिछले दो महीनों के लिए चीन के खुदरा बिक्री वृद्धि के आंकड़े और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े, यूरोजोन और जापान के मुद्रा स्फीति के आंकड़ों पर भी बाजार की पैनी दृष्टि बनी रहेगी।
Well, we can talk about US markets versus Indian markets, you know, but for the moment, let's suspend that and move over to Delhi. We're joined by Alok Gupta. Yes, Alok ji, please ask your question.
Yes, good evening, Market Mantra team. Okay. I just wanted to know for a new investor who is looking for this bearish market, what are the set of right portfolio in the range of 10,000 rupees per month? Specific blue chip, small cap and all, would you recommend for now to start with? Someone who is just thinking to do a new SIP. So what are the mutual funds, or maybe what are the type of mutual funds you are recommending, sir? That's all my question. Thank you.
Sure. So, I'm presuming that you're looking to invest for the long term, to build wealth, really. And for that, you should look at flexicap funds which invest, a bulk of your money in large cap stocks, but also spread a portion of their money in mid and small caps. So you get a market wide exposure, and it offers a very hands off approach where you as an investor do not have to do much other than just start your SIP and continue with it, and let the fund manager take a call on which market segment, which particular sectors, which particular stocks are looking attractive at this point in time. And more so for a new investor who may not be very familiar with the ups and downs of the market, or what are good areas within the market to invest in. So, among flexicap funds, you can look at, I can give you 2-3 funds names. You can pick any two funds and maybe start your two SIPs of 5,000 rupees each. Mentioned you're looking to make an investment of 10,000. So pick any two funds out of funds like HDFC Flexicap, Parag Parikh Flexicap, Kotak Equity Opportunities, ICICI Approved Value Discovery. So these are a few of the long term, very consistent funds with good fund management teams, very experienced fund managers. Pick any two and start your SIPs.
All right. Market participants will also closely monitor FII and DII activity, as well as the prices of oil and gold. Last week, Brent crude futures, the international oil benchmark, rebounded marginally, while COMEX gold futures surpassed the $3,000 per ounce mark for the first time ever. Last week, the Indian stock market resumed its downward trajectory, displaying a consolidation tone amid mixed global cues after a brief recovery earlier this month. Investor sentiment remained cautious due to escalating concerns over a potential global trade war driven by updates on US tariff plans and retaliatory tariffs from other countries. A look at the oil prices now. Global crude oil prices witnessed slight weekly rise as investors weighed the diminishing prospects of a quick end to the Russia-Ukraine war that could bring back more Russian energy supplies to Western markets. Brent crude oil future rose by 0.3% last week to end at $70.58 a barrel. US WTI crude added 0.2% during the week to finish at $67.18 per barrel. Russian President Vladimir Putin said that Moscow supported a U.S. proposal for a ceasefire in Ukraine in principle, but sought a number of clarifications and conditions that appeared to rule out a quick end to the fighting. On Friday, U.S. President Donald Trump again urged Russia to agree to a ceasefire proposal. Also, the International Energy Agency warned that global oil supply could exceed demand by around 600,000 barrels per day this year due to growth led by the U.S. and weaker than expected global demand. Before we get down to oil, what would you say about the U.S. markets vis-a-vis Indian markets, Ashutosh? I mean, there has been a... Indian markets look more stable compared to the U.S. markets as of now. What would you say to that?
Well, I won't have a very definitive view on that. And, you know, it's a function of, you know, people have generally a short term, you know, view. U.S. markets have done very well in the last decade or so. Mm-hmm. And now, you know, there is a little bit of an upheaval going on. From an investor's perspective, see, what is more important is to have a reasonable diversification. We generally believe that a lot of Indian investors have a very strong domestic bias, and that's true for just about any investor perhaps globally. Mm-hmm. But it is very advisable to have at least some portion of your money diversified outside India, even though the long-term prospects of Indian markets are very good. Mm-hmm. We have a very stable macroeconomic environment. And looking ahead, you know, India does appear one of the most promising, if not the most promising, you know, economy for investment. Mm-hmm. Despite that, it is very advisable to invest some portion of your money outside India. And when you look at the other economies, U.S. economy, you know, and U.S. stock markets naturally appear one of the top contenders for that diversification.
So, आप क्या बता ये कहना चाह रहे हैं कि अपने जो investment है उसके कुछ थोड़ा प्रतिशत U.S. के Nasdaq में या Dow के index fund में invest कर सकते हैं?
जी जरूर, बिल्कुल
बिल्कुल. और आप लगातार बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करें तो थोड़ा फंड को डाइवर्सिफाई रखें. ऐसे में इंडेक्स फंड के बारे में आपने कहा कि अगर लगाना ही है तो बहुत छोटा अमाउंट अपना प्रतिशत लगाएं. फ्रैंकलिन इंडिया
इंडेक्स फंड तो आपका कोर पोर्टफोलियो हो सकता है
जी.
स्मॉल कैप टाइप सेक्टर फंड्स के लिए मैंने कहा.
सेक्टर फंड के लिए जी जी, सेक्टर फंड के लिए. ऐसे में फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड को लेकर हमारे पास कई सवाल आए हैं. ये फंड कैसा रहेगा आने वाले समय के लिए?
देखिए, फ्रैंकलिन इक्विटी हाइब्रिड फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड श्रेणी का फंड है जो करीब 70-75% आपका पैसा इक्विटी मार्केट्स में लगाता है और बचा हुआ पैसा डेट फंड्स में लगाता है. इस टाइप के फंड्स देखिए जो थोड़े कंजर्वेटिव होकर चलना चाहते हैं इन्वेस्टर, जो थोड़ा रिटर्न पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लेने को तैयार है लेकिन जब मार्केट गिरती है तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज के लिए वो ऐसे फंड में जाना चाहते हैं कि जो मार्केट से थोड़ा कम गिरे. तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स उसमें काफी कैपेबल हैं. इनफैक्ट कंजर्वेटिव ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए या शुरुआती इन्वेस्टर्स के लिए एग्रेसिव हाइब्रिड एक काफी बेहतरीन कैटेगरी मानी जाती है.
मतलब इसमें टाइम अगर होराइजन आपके पास है 4-5 साल का तभी इसमें इन्वेस्ट करें?
जी, कम से कम 4-5 साल का टाइम आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये एग्रेसिव हाइब्रिड्स हैं. तो फिर भी 70% पैसा तो आपका इक्विटी मार्केट में लगता ही है और इसलिए अगर कभी मार्केट काफी शार्प करेक्शन विटनेस करती है तो ये फंड्स भी काफी डाउनफॉल एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो इससे कम टाइम होराइजन में तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है.
बिल्कुल. एक सवाल हमारे पास और आया है कि जो म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न आपको मिला इसका जो कैलकुलेशन होता है XIRR के माध्यम से भी कई बार वो करते हैं, तो क्या है XIRR और हम किस तरीके से कैलकुलेट करें कि कितना हमें रिटर्न मिला है?
देखिए, XIRR मोटे मोटे तौर पर अगर आप ये देखें कि आप एक अपने निवेश की जर्नी में एक इन्वेस्टर मेरे ख्याल कई बार पैसा लगाता है कई बार पैसा निकालता भी है, तो हम जब इनफ्लो आउटफ्लो एडजस्ट करके रिटर्न निकालते हैं. अगर आपका SIP भी चल रहा है तो आप 10 साल का रिटर्न आपका रिटर्न नहीं है क्योंकि आपने 10 साल में हर महीने अलग अलग डेट पर किसी किसी डेट पर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है. तो आपका एक्चुअल रिटर्न उस फंड से कितना है ये आप XIRR के माध्यम से निकाल सकते हैं. क्योंकि जो हम आमतौर पर जो फंड कंपनीज अपना रिटर्न घोषित करती हैं वो होता है उसका ट्रेलिंग रिटर्न होता है या वो अपना SIP रिटर्न देते हैं लेकिन वो एक पर्टिकुलर डेट पे होता है. आपके लिए जो कस्टमाइज रिटर्न है वो आप XIRR के माध्यम से निकाल सकते हैं.
Alright, on that note, thank you so much, Ashutosh, for joining us and enlightening us with your views and reviews on mutual funds. That was Ashutosh Gupta, our expert for today on mutual funds. And friends, before we wind up, as a reminder of the headlines, while India and New Zealand announced launch of free trade agreement negotiations, domestic markets to focus on U.S. Federal Reserve's FOMC meet, trade policy developments, domestic and global macroeconomic data for Qs next week. And global crude oil prices register slight weekly rise. Brent crude ends over $70 per barrel. So with that, on that note, it's time for us to bid adieu. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Harsh Ranjan signing off. Namaskar till we meet again. That's tomorrow at 6:30 sharp.
Namaskar.